सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद अवध श्लोक संख्या 28 का तात्पर्य नहीं है तो मैं श्लोक का पुनः अनुवाद करूंगा उसके बाद इस मां का साथ करूंगा। वंशेन वेगम तदतन्त्रमत्मभिस्फरन्तमच्छिद्रम् उपर्यतो हरिः कृत्वाट्टहासम् हरमत्मनोर्बणम् निमीलिताक्षम् जगृहे महाजवः। अनुवाद है, अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना अपने तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वह नृसिंह देव के अट्टहास देखने से अपनी आंखें बंद कर दिया था। इस बार समझे यहाँ पर जो दृश्य है वो क्या है, तम शेन बेगम, शेन बेगम का मतलब है बाज की गति से। बाज जो है अपनी गति से कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे आता है। बाज की गति से वो चरंतम ऊपर नीचे चल रहा है। अछिद्रम, अछिद्रम का मतलब है कोई छिद्र नहीं दे रहा है शत्रु को, अपने ढाल तलवार लिए हुए शत्रु को किसी प्रकार का छिद्र नहीं दे रहा है कि मतलब उसके ऊपर शत्रु हमला कर पाए। अपनी सुरक्षा में कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है और ढाल तलवार भी दिए हैं कि कहीं से भी शत्रु को अवसर ना मिले, छिद्र ना मिले कि उसके ऊपर प्रहार हो। और अछिद्रम अट्टहास, लेकिन हरि यानी भगवान नृसिंह देव ने क्या किया, अट्टहास कर दिया, बहुत कस के अट्टहास किया। अट्टहास समझते हैं, एक तो हंसी होती है जिसमें हंसी होती है मुस्कुराहट होती है, अट्टहास अट्टहास बहुत प्रसिद्ध है भयानक जो हंसी होती है अट्टहास कहलाता है। नृसिंह भगवान ने जब अट्टहास किया तो निमीलिताक्षम उसकी आंखें बंद हो गई, तो असुर की जो है आंखें बंद हो गई। क्यों? भयभीत होकर आंखें उसकी बंद हो गई, भय के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। खरम तो भगवान की जो अट्टहास है वो बहुत ही कठोर अट्टहास था और तीव्र गर्दन से भयभीत होकर के निमीलिताक्षम असुरराज हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गई और भगवान ने उसको जो है पकड़ लिया। महाजवा, महाजवा का मतलब बहुत शक्तिशाली या उनमें जो गति है वो बहुत तेज है, तो बहुत तेज गति से नरसिंह भगवान ने उसको पकड़ लिया। जब आंखें बंद कर लेगा तो फिर वो देख नहीं सकता सामने, उसकी आंखें बंद हो गई और भगवान ने उसको पकड़ लिया। तो ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, जा रहा है, है? कि भगवान नृसिंह को पकड़ ना पाए और ढाल और तलवार भी लिए हुए हैं कि उसके ऊपर नृसिंह भगवान कोई प्रहार ना करें, है ना। लेकिन जैसे भगवान ने अट्टहास किया उसकी आंखें बंद हो गई डर के मारे और भगवान उसको पकड़ लिया। अब सुनिए मेरे पीछे बोलिए, विश्व विस्फुरंतम ग्रहणातुरम हरे, विश्व चारों ओर इस पुरंतम अपने अंग हिलाते हुए ग्रहण आतुरम पकड़े जाने से पीड़ित हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नृसिंह देव ने सांप यथा जिस तरह आखुम चूहे को पुलिस अक्षत जो इंद्र के वज्र द्वारा भी ना काटी जा सके। वचन त्वचा या खाल को द्वारी देहली पर ओरुन अपनी जान पर आपत्य रख कर ददार फाड़ डाला ली गया सरलता से अपने नाखूनों से यथा जिस प्रकार अधीन सांप को गरुड़ा गरुड़ विष्णु का वाहन महाविषम अत्यंत विस्तर अत्यंत विस्तर बोली जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ दे उसी तरह भगवान सिंह देव ने उस हिरण्यकश्यप को दबोच लिया जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। पकड़े जाने पर शोणी वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर छटपटाने लगा। क्यों ही नृसिंहदेव ने उस असुर को अपनी गोद में दबोच लिया और अपनी जानों का सहारा देकर उस सभा भवन की देहली पर अपने हाथ के नाखूनों से सरलता पूर्वक उस असुर को भार डाला। वर्णन हुआ है बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। अब श्लोक आप लोग देख रहे हैं श्लोक को समझेंगे आज पर पढ़ने से पहले श्लोक के शब्दों को समझते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत बड़ी कृपा की है इस श्लोक के एक शब्द का अनुवाद दिया है कि ताकि हम श्लोक का भी अध्ययन कर सकें जैसे संस्कृत के शब्दों का भी जो है अध्ययन कर सकें। इस श्लोक में आप शब्द जरा देखिए कुछ शब्द कैसे हैं कि ऊपर बिंदी है जैसे विश्व स्फुरंतम तो जहां पर ऐसी मतलब बिंदी आती है तो उसमें अंत में मा आता है ना तो वो जो है ये शब्द जो है हिरण्यकश्यप के लिए है ना। विश्व की स्फुरंतम चारों ओर छटपटाते हुए इस वक्त चारों ओर छटपटाते हुए हिरण्यकश्यप के लिए है। फिर ग्रहण आतुरम हिरण्यकश्यप के लिए है ना। ग्रहण आतुरम माने पकड़े जाने से आतुर आतुर है बहुत ज्यादा है ना बेचैन है ग्रहण आतुरम। फिर हरि हरि ये सब जो है भगवान के लिए दर्शन देव के लिए। फिर व्यालो व्यालो सांप यथा जिस प्रकार से सांप। फिर आखुन आखुन माने चूहे को है ना हिरण्य कश्यप को कितना चूहे से देखिए आखुन सब इस प्रकार चूहे को पकड़ ले। फिर पुलिस अक्षत त्वचम एक शब्द है पुलिस अक्षत त्वचम ये किसके लिए आया आपका अंदाजा किसके लिए हो सकता है हिरण्य कश्यप के लिए या नरसिंह भगवान हिरण्य कश्यप तो अंत में माता है ना पुलिस अक्षत त्वचम पुलिस का मतलब वज्र के द्वारा जिसकी त्वचा अक्षत थी वज्र भी जो है उसकी त्वचा में क्षत नहीं कर पाया क्षत माने कोई भाव नहीं कर पाया पुलिस अक्षत मतलब इतना शक्तिशाली है उसकी त्वचा इतनी शक्तिशाली है कि वज्र से भी उसकी त्वचा में भाव नहीं जबकि वृत्रासुर जो है देवताओं के जितने अस्त्र शस्त्र हैं सबको खा गया था अस्त्र शस्त्र में जो प्रभाव नहीं था वज्र के द्वारा ही उसका जो है लेकिन हिरण्य कश्यप का जो त्वचा है वो इतनी कठोर है कि वज्र से भी जो है वो नहीं उसमें धनुष भी नहीं पड़ सकती। पुलिस अक्षतम द्वारी कुरुण आपत्य द्वारी पूर्ण आपत्य सुंदर छे द्वारी मतलब द्वार द्वार में दरवाजे पूर्ण आपत्य है पूर्ण का मतलब जंगल में आपत्य माने गिरा करके आपत्य में जिसने कहा है आपत्य रख करके करके क्या कटक करके तो द्वार में भगवान उसको ले गए और फिर जंगल उसको पटका आपत लगार लिया लगार फाड़ लिया 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 पूरा बिना किसी परिश्रम के खेत खेल सरलता पूर्वक खेत खेल लगार फाड़ डाला मैं खैर कैसे नाखूनों के द्वारा नाखूनों के द्वारा यथा हिम जिस प्रकार से सर्प को गरुड़ गरुड़ जी महाविषम महाविषम सर्प अहिम महाविषम महा इस ऐसे सर्प को गरुड़ जी जैसे फाड़ देते हैं कैसे फाड़ते हैं नाखून से यहाँ फाड़ने की बात है तो वहां सांप और चूहे का ध्यान नहीं है सांप थोड़े चूहे को फाड़ता है सांप क्या करता है चूहे को भारत थोड़ी है तो भगवान थोड़े निकल गए यहाँ तक पकड़ने की बात है तो यहाँ पर तुलना छोटे गोस्वामी कह रहे हैं सांप चूहे की कि सांप चूहे को जैसे पकड़े तो फिर चूहा छोड़ नहीं सकता बिल्ली पकड़ती है चूहे को तो छोड़ती भी है और खेल करती है तो सांप नहीं खेल सकता तो यहाँ तक बिल्ली की तुलना नहीं की सांप आप पकड़ना चूहे हो तो चूहा नहीं कर सकता छोड़ नहीं सकता इस प्रकार से भगवान इसको पकड़ा ये यहाँ तक फाड़ने की बात है यहाँ पर भगवान तुलना कर रहे हैं किसकी गरुड़ जी जो है नाखून से सांप को फाड़ दे बड़ा बिसला सांप को तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात करने का इसी का गुरु पाठ की हिरण्य कश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह ना तो विष्णु पर मरेगा ना आकाश में इस बात की चर्चा प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं कि हिरण्य कश्यप को वरदान प्राप्त था कि वो ना तो जमीन में मरेगा ना आकाश में मरेगा क्योंकि भगवान कृष्ण देव ने उसको कहां था गोद में वाह गुरु गुरु माँ बाप ने अपनी गोद में उसको दबोचा अपनी गोद में दबोचा तो गोद में भगवान मारेंगे बड़े सौभाग्य नहीं मारे भगवान किसी को अपनी गोद में अपनी गोद में रख रख मारे और भगवान का दर्शन करें जो है बड़े भाग्यशाली थे भगवान अपने गोद में चतन अपनी गोद और चतन वहां पर मुख दर्शन करते हुए हरदार साबर ने अपना शरीर छोड़ा और सौभाग्य की बात तो गोद में अब कुछ सोच सकता है कि मैं जमीन में ना रहूं आकाश में ना रहूं तो क्या फिर कहां रहूं कुछ सोच नहीं सकता भगवान के पास है जैसे उपाय है गोद के अलावा और कोई जगह हो नहीं सकती ऐसी जहां कहीं कि नहीं चलने के लिए और आकाश नहीं तो यह हो सकती है गोद के अलावा अगर टेबल कहें तो टेबल भी जो है जमीन में गोद को कह सकते हैं जमीन के लिए और आकाश नहीं विचार करना पड़ेगा शायद गोद के अलावा कोई जगह नहीं जहां कहने के लिए जमीन के लिए और आकाश नहीं गोद है जगह है भगवान इसको जो है तो प्रभु लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया जाए कि जमीन में मैं ना मरूं आकाश में ना मरूं मतलब बदले में कोई संभावना ही नहीं है तो बदले क्या संभावना जमीन में ना मरूं आकाश में ना मरूं फांसी वगैरह लगा दिया जाता है तो आकाश में आपको अपाय नहीं चलेगा आपकी बच्ची काम नहीं करेगी फांसी में लटकाते हो तो आकाश में लटकाते हो तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो ना तो वचन पर मरेगा ना आकाश में अगर ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत बनाए रखने के लिए नृसिंह देव ने हिरण्यकश्यप के शरीर को अपने गोद में रख लिया जो ना तो स्थल में था और ना आकाश में बस यही वरदान मिला था कि वो ना रात्रि में मरेगा ना दिन में इस श्लोक में तो वर्णन नहीं आया है लेकिन ये वर्णन और भी शास्त्रों में आता है कि वो समय क्या था वो धूरी बेला जो है जब सर्द चले जाती हैं, और अगर कोई उनके साथ नहीं होता है चरवाहा तो अपने आप आ जाती है उनका स्वयं से, वो धूली बिना कहलाती है। वो जो है जिस समय ना तो दिन होता है ना रात होती है, तो ऐसा समय होता है लोगों के घरों की धूल जो है वो धूल दिखाई देती है, वो धूली बिना कहलाती है, निश्चित समय होता है वो अपने आप लौट करके आ जाएंगे। उनका जो है सेटिंग है उनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में ऐसी सेटिंग है कि वो उस समय जो है मतलब आ जाएंगे वापस, उनके पास घड़ी वगैरह कुछ मिलता है घड़ी नहीं देखती है, ठीक है जिस समय जो है अंतिम बता रहे रात की होती है वापस आ जाती है, तो दोनों की भूल जो है थोड़ा उसकी भी दिखाई पड़ती है उनके वो भूली है, तो वो समय जो है आप अंतिम का समय रात का देखा है दिमाग कोई लगा नहीं सकता दिन का बिना मानो रात का बिना मानो रात का नहीं सकते आप बताइए कुछ कोई संभावना नहीं ऐसा कौन सा समय चलते हैं हमारे हाथ में तो वो समय जो है साय का संधि संध्या संध्या ऐसी बनाए दिन और रात की जो संधि संध्या कराते हैं। आगे ब्रह्मा ने कहे अतः ब्रह्मा के सृजन को रखने के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप को संध्या समय मारा जो दिन का स्थान था तथा रात्रि का शुभारंभ, किंतु जो ना तो दिन का ना रात। आगे ब्रह्मा कहते हैं उसने ब्रह्मा जी से यदि वर्तमान कर रखा था कि वो ना तो किसी हथियार से मरे और ना ही किसी मृत या जीवित वस्तु के द्वारा अस्त्र से ना मरे ना शस्त्र से मरे, उसने वरदान मांगा था ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो, है ना अस्त्र क्या क्या होता है जो फेंक के मारा जाता है, शस्त्र तो मेरे हाथ में पकड़ के ये तलवार है तो शस्त्र हाथ पकड़ करके मारा जाता है और फेंक के मारे जाते अस्त्र सकेंड किनारे के अस्त्र हैं ब्रह्मास्त्र ये सब जो अस्त्र हैं जो दूर जो है जाते हैं दूर जाते हैं तो मारे जाते हैं अस्त्र के जाते हैं, तो अस्त्र से मर अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो, लेकिन ना खून जो है ना अस्त्र है ना शस्त्र आप कहेंगे शस्त्र को कह सकते हैं क्यों शस्त्र है नहीं क्यों है हाँ पकड़ा पड़ेगा शस्त्र उसके जो पकड़ करके मारा जाए तो शस्त्र नहीं है शस्त्र है ना भगवान की बुद्धि तो भगवान ने अपने नाखून ऐसे प्रकट कर लिए ऐसे प्रकट कर लिए इतने कठोर नाखून प्रकट कर लिए कि बड़ी आसानी से उसको चीर दिया जबकि वज्र से भी कठोर था इंद्र के वज्र से भी जो है उसकी त्वचा में घाव नहीं हो सकता था तो ऐसा तो नहीं है कि इंद्र ने प्रयोग किया हो अपने वज्र का कि भाई जल्दी ऐसा चलाया हो ऐसा चलाया कि नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि त्वचा इतनी कठोर थी कि अगर वज्र का प्रयोग करे इंद्र तो भी त्वचा में घाव नहीं होगा, अभी घटना हुई हो यहाँ हुई होने बात है लेकिन ऐसी उसकी त्वचा इतनी कठोर होता है मंत्र से भी ज्यादा कठोर होता है और उससे जो है नाखून इतने कठोर थे भगवान के ली लिया जदार ली लिया। यहाँ ब्रह्मा लिखते हैं कि उसने वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर रखा था ना किसी हथियार से मरे ना ही किसी मृत या जीवित व्यक्ति के द्वारा, क्या व्यक्ति का मतलब वस्तु समझना चाहिए जीवित वस्तु या मृत वस्तु, जीवित व्यक्ति होता है और मृत वस्तु होती है, तो ना तो जीवित वस्तु के द्वारा ना मृत वस्तु के द्वारा मरे। अतः ब्रह्मा के वज्र को रखने के लिए भगवान श्रीहर ने हिरण्यकश्यप के शरीर को अपने नाखूनों से चीर दिया जो ना तो हथियार थे ना ही मृत या जीवित, नाखून जो है इनको आप क्या कह सकते हैं जीवित कह सकते हैं नहीं अमृत कह सकते हैं जीवित है अमृत उंगलियां फिर जीवित है उंगलियां जीवित है लेकिन नाखून ना जीवित है ना मृत है, कैसे जीवित नहीं है क्यों कैसे कहते हैं जीवित नहीं आप काटते हैं तो दर्द नहीं होता है हमारे शरीर का जितना हिस्सा जिंदा होता है उससे थोड़ा अगर कुछ आप जो हो तो दर्द होगा, तो नाक में काटते हैं दर्द नहीं होता है, लेकिन पेट भी नहीं है क्यों बड़े होते हैं, पेट भी नहीं है बड़े होते हैं, तो ना जीवित है हमें उनके काम भगवान का दिमाग तो डाल डाल में पाल पाल बाहर वाला मैं ना अब वो चला गया था ये पर्वत हाँ पर्वत, लेकिन ऐसी हमारी नजरों में तो नहीं दिखाई पड़ता पर्वत है, लेकिन हमारे नेत्रों से जो है वो उनका बढ़ना उनका बढ़ाना दिखाई नहीं पड़ता, कभी पैदा हुए थे कभी बड़े हुए थे जो अभी तो हमारे आंखों के सामने नहीं दिखाई पड़ता। जैदियों का भी सुनना क्योंकि कर की कमर से कर कमर उसमें श्रृंग जिसे कमर की जो है श्रृंग होते हैं शिखर होते हैं और धुनिया होती है शिखर होते हैं है ना, तो जो है शिखर शिखर का मतलब उतनी है इसका और शिला कण के शिला जो है हिरण्य कश्यप का शरीर शिला के समान हिरण्य कश्यप क्या है शब्द क्या है नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद प्रहलाद आए हैं हिरण्यकशिपु वक्षा शिला हिरण्यकशिपु का जो वक्षस्थल है वो शिला के समान और उसमें कांपने के लिए उनके नाखून है छह हिरण्यकशिपु वक्षा शिला का निर्णय खा रहे वक्षा उससे वक्षस्थल क्या है शिला के समान उससे होगी ना जो घर की मानाएं जो है सिर में जो है वो इसलिए ना उसको टाँकना टाँकना जरूरी होता है, अगर टाँके नहीं तो उसको सही नहीं होगी इसी से जो है वो फिसल जाएगा ना पट्टा फिसल जाएगा तो पट्टा फिसले नहीं तो शिला को टाँकना पड़ता है तो उसकी शिला को टाँकना जरूरी था उसकी शिला को टाँकने के लिए जो है भगवान के जो नाखून है वो जो है छेनी के समान है छेनी से क्या कारीगर दिमाग कितना मरने की मतलब कोई संभावना ही नहीं छोड़ी है ना, भगवान ने हर प्रकार की संभावना निकाली है ना, आगे भगवान कहते हैं निस्संदेह नाखूनों को मृत कहा जा सकता है फिर तो साथ ही में जीवित भी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है लेकिन नहीं नहीं कहना चाहिए, अगर कहेंगे तो फिर तो हिरण्य वो ब्रह्मा जी का वरदान फिर हो जाएगा, ये कहेंगे ना जीवित ना पाए अपने वरदान मांगा था जीवित बचपन से ना करूँ मैं जीवित बचपन से करूँ तो फिर ये कहेंगे कि ना माखून जीवित है ना आगे प्रभावित है ब्रह्मा के समस्त वरदानों को अच्छे से बनाए रखने के भगवान संदेव ने उस मानसुर हिरण्यकशिपु को अत्यंत विषम स्थिति में किन वचन सरलता से मारा अत्यंत विषम स्थिति भगवान कह रहे हैं अत्यंत विषम स्थिति में सरलता पूर्वक मारा, स्थिति बड़ी विषम थी विषम माने असंभव, ऐसे वरदान मांगा इतने वरदान मांग लिए ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए बड़ा मुश्किल और भी कई ईश्वरों ने वरदान मांगे कि मैं ना करूं इतने वरदान नहीं मांगे जितने वरदान मांगे इतने वरदान जैसे मनुष्य था मनुष्य नाम का सुर था उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है जिससे वरदान मांगा उसने वरदान मांगा कि मैं गिरी वस्तु से मरूं ना सूखी वस्तु से मरूं इतना ही पढ़ा तो फिर कैसे पढ़े गिरी वस्तु से मरना सूखी वस्तु से मरे नहीं पड़ेगा होता हाँ नहीं कैसे पड़ेगा तो फिर जो है इंद्र को किसने मतलब ये सुझाव दिया था कि बल्कि हम जो है समुद्र का झाग लगा हुआ, तो समुद्र का जो झाग है ना गीला है ना सूखा है, है? पानी से कौन होता है, इसलिए आप सूखा भी नहीं कह सकते। लेकिन आप हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ गीला नहीं होता, सूखा है ना गीला है, समुद्र का झाग। इस तरह से जो है इंद्र ने उसका भी किया। ऐसे कई जो हुए उन्होंने कई प्रकार के वरदान मांगे, इतने प्रकार के वरदान नहीं मांगे। भगवान सब प्रकार के वरदानों को अक्षत रखते हुए, सुरक्षा रखते हुए भगवान ने जो है मतलब इतने ऐसे उपाय को मारा, यहाँ अनुभव का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर हमें यही विचार करना है कि हिरण्यकशिपु ने जो है वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, और अश्वों की बुद्धि जो है कितनी तेज है ये हमें समझना है। लेकिन यहाँ तक भगवान की बात है, भगवान के पास जो है हजारों उपाय हैं मारने के, तो कोई जो है चाहे जितना दिमाग लगा दे कि मैं ऐसे भी ना मरूँ ऐसे भी ना मरूँ, लेकिन भगवान जो है भगवान के पास उससे ज्यादा उपाय हैं मारने के। तो सर चलिए, अगर आप अपने मृत्यु को टालना चाहते हो, मृत्यु को रोकना चाहते हो, तो ये विधि काम नहीं करेगी। हिरण्य कश्यप ने कितना परिश्रम किया था, कितनी तपस्या की थी, 100 दिन मंदर पर्वत की धरती में वो उसने क्या किया था, पंजों के ऊपर खड़े होकर के, दोनों पंजों पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके और आकाश की ओर देखते हो। आप अगर करें तो कितनी देर करना होगी, दोनों पंजों पर खड़े हो गए और हम दोनों हाथ ऊपर उठा के और आकाश की ओर ही देखना और कुछ नहीं देखना। कितने समय तक किया था, एक काम में सौ देखा 36,000 साल, पृथ्वी 36,000 साल, और पृथ्वी में था वो स्वर्ग में पड़ी था मंदिर पर्वत, तो पृथ्वी के 36,000 साल उसने तपस्या की। और मृत्यु हुई कितने, 5 साल में, 5 साल में वो जो है कुछ कर पाया दादागिरी, क्योंकि कैलाश माता जो है जो लाल जी को अपने घर में धारण किए थे, उसने जन्म में बालक को जन्म नहीं दिया, उनके के भय से उन्हें मार सकता है, उनको नारद जी के आश्रम में वो रहे हैं, जब घर में कैसे पाया तब बालक को जन्म दिया, और बालक जब 5 साल का था तो ऐसे भगवान की लीला हुई। तो इतना परिश्रम किया मृत्यु से बचने के लिए, और 5 साल तक उसने खूब अपना मारा आतंक किया है ना, बस उसके बाद मर गया तो वरदान खत्म हो गया। अब क्या उसके बाद कुछ कहने के लिए कुछ दावा है, दावा करेगा कि मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से 5 साल की वरदान मांगा था, क्या वो कह सकता है, कह सकता है, तो नहीं कह सकता, हम क्या कह सकता है, अगले जन्म में जो है मुझे मिलना चाहिए वरदान, मेरा वरदान जो है वो होना चाहिए, क्यों
और आप और हाँ गुरु बता दी
पहली बात ये कि उनकी
द्वारा उसकी मृत्यु हुई, भगवान यहाँ पर मृत्यु हुई तो क्या हुआ? मोक्ष को प्राप्त हुआ, नहीं मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। तो तीन जन्मों तक उसको जो है अभी तो पहला जन्म है, तीन जन्मों तक रहेगा, तीन जन्मों तक तो अभी तीन जन्म लेते हैं इस पौधे जगत में, तो कहेगा कि मुझे जो है ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था वो जो है मेरे साथ रहना चाहिए, और कोई माता जी यहाँ जाएगा भगवान के हाथों से उठने को क्या हुआ? वो चाहते थे मृत्यु नहीं, वो भगवान के हाथों मृत्यु नहीं चाहते थे, वो चाहते थे भगवान से ही हमारी शत्रुता हो, शत्रुता हमारे भगवान से हो, जिससे कि हम भगवान के संपर्क में रहें, भगवान से शत्रुता होना बड़ा लाभ है ना। तो तीन जन्मों के बाद तो जब वो आए ही वापस भगवान के द्वारा आए, भौतिक शरीर से
जो उपलब्धि होती है,
भौतिक शरीर के साथ खत्म हो जाती है, भौतिक शरीर में उपलब्धि की आपने, मान लो आपने जो भक्ति की, आपने जो भक्ति की तो आपके साथ रहती है, आपने जो भक्ति की वो आपके साथ रहती है, वो संस्कार मिल जाते हैं आपको। हाँ जी, लेकिन ऐसी ऐसी स्थिति में वो नहीं मारा जाएगा, वो तो है उसके साथ रहना चाहिए, रहना चाहिए ना, क्या बता रहा है? हाँ जी,
क्या होता है?
अंतिम भारत क्या क्या प्रधान केंद्रित होता है वो अगर दावा करे ब्रह्मा जी आपने इतनी तपस्या की इतनी तपस्या की शरीर में तुम विवश हो गया दिमाग में जो है सब खा लिया मांस त्वचा पर नहीं रही उसकी उसकी त्वचा का नहीं रही खून भी नहीं रहा केवल हड्डियों का ढांचा हो गया 36,000 साल तक मैंने तपस्या की तो आपने मुझे जीवित कर दिया और मुझे नया शरीर दिया खून दिया मांस दिया सबकी पेट्रो सोचा थी कि इंद्र का पत्र भी नहीं है उसका खबर बना सकता है तो अब जो है अगर मेरा शरीर छोड़ गया तो दूसरी तरह में तो मेहनत भी वो करना वो करना तो हाँ जी
क्या गलती कर रही क्योंकि भगवान के पास नहीं गए
तो सीखते भी नहीं थे, तो सर सीखे थे पहले से, हाँ बैठे जो हम हैं वो सब लोग जानते थे, मंत्र जानते थे, इसे जान बुझे गलत पढ़ते थे कि पिताजी जो है मूर्ख समझ करके पढ़ाना पढ़ाने का प्रश्न न करें। लेकिन पिताजी बेचारे जो है बहुत दयालु थे, तो लगे रहे पढ़ा तो पढ़ाए, उनका शरीर छूट गया ये नहीं पढ़ पाए, ये सब पढ़े हुए थे, पढ़ा लिखना सब जानते थे, इसलिए जन्म का सब अभ्यास को ऐसा होता तो कहता कि अब मैं थोड़ी तपस्या करूंगा, मैं तपस्या तो नहीं है, भगवान का होना तो कहने का मतलब यही है कि मृत्यु से बचने के लिए इतनी तपस्या, इतनी तपस्या, इतना परिश्रम सब व्यर्थ है, केवल एक ही उपाय है मृत्यु से बचने का, हरित निराण प्रधान महाराज महाराज जो है भगवान की शरण भी तो उसमें प्रधान मांगने की भी जरूरत नहीं है, केवल सेवा मांगने, अगर आप भगवान अगर आपके सामने भगवान आ जाए शायद कभी ऐसा नहीं कुछ सोचा भी नहीं और आ जाए तो बोलो क्या चाहिए तो क्या मांगोगे, कैसे तैयार रहोगे, क्या मांगोगे, क्या मांगोगे, सेवा तो बाकी सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, उसे मांगते हैं सब कुछ बेकार है, मुक्ति भी मांगते हैं तो वो भी बेकार है, मुक्ति मांगते हैं वो भी बेकार है, जैसे कोई जेल के अंदर व्यक्ति है अगर वो अगर उसको छोड़ दिया जाता है जेल से बाहर छोड़ दिया जाता है उसको कोई सेवा नहीं मिलती, उस काम नहीं मिलता तो फिर जेल काटेगा तो जेल के अंदर आएगा, उसको अच्छा काम नहीं मिलता है और शहर में उसको मतलब निकाल दिया और आवारा जो शहर में घूम रहा है तो गलत काम करेगा ही और फिर जेल में जाएगा, तो अगर आप सेवा नहीं मांगते है ना तो मुक्ति से जो है कुछ लाभ नहीं, सेवा ये जो है मतलब शिक्षा है आपके श्लोक में। अब आप लोग यूनिवर्सिटी प्रश्न है जो चर्चा करेंगे, तो है भाई नहीं क्या है मैं क्या बंद नहीं करना इसमें चालू है चालू नहीं किया क्या भी काम नहीं करते, जैसे हिरण्य कश्यप की तरफ से काम नहीं करते आप दोष बोलिए, हिरण्य कश्यप की तरफ से दोष बोलिए, सब कुछ सुनाई पड़ रहा है जोश को भी दोष के मैं रिपीट करूँ, मैं रिपीट नहीं कर सकता, मेरे लिए शिष्टाचार नहीं है, मैं रिपीट करूँ मारता है, फट से मारेगा वो, तब फिर नागपुर में पकड़ कर फिर पटक दिन है, पटक ही फिर इसको मारता है और नहीं हुआ जब थोड़ा प्राण रहता है। तो इसी प्रकार नरसिंह देव ने सांप जैसे उसको पकड़े जबड़े से और भाग के समय उन्होंने अपने कंठा पर ही डाल दिए इसे। तो जमीन पर पटक देते तो ब्रह्मा जी का जो बलिदान है विफल हो जाता है, तो पटके नहीं जमीन पर, तो इसलिए अपने जंघा पर ही पटके और पटके फिर अपने नाखून से उसको था। और मतलब ये वस्तव था कि भगवान ये चाह रहे कि अगर से कोई तपस्या करता है हाँ कोई योग करता है तब तक का कोई संजोग हम लगभग एक और पर नहीं कर सकते तो कतल भूमि हम तो यह भी कह सकते हो जैसे कि तपस्या किया था लेकिन उसके तो स्मरण था विष्णु को बदला गया। जैसे कंस कंस ने स्मरण किया और भगवान को प्रसन्न मारने के लिए द्वेष कर फिर देखिए भगवान ने यही किया तो भक्त रसम को इसमें वर्णन किया गया है। इसी प्रकार की जो 12 रस है उसमें भी ये रस है प्रतिकूल रस है फिर उससे मुख्य प्राप्त हो जाता है और जिस व्यक्ति को मुख्य प्राप्त हो जाता है मुक्ति प्राप्त हो जाता है तो फिर पूर्व जन्म में इसका स्मरण रहता है कि मुक्त हो गया। तो जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है उसको पूर्व जन्म में स्मरण रहता है जब स्मरण उसको कहा जाता है। तो हिरण्य रस कैसे भूल गया इनका प्रश्न है कि काल ने भी वो भगवान ने मारा था कंस के रूप में उसको याद रहा। ऐसा है कि कंस के रूप में उसको याद रहा तो ये उसको सदा याद रहा क्या किसी ने बताया तो उतना जितना बताया उतना उसको याद रहा वो देखना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा। तो जो उसको सदा मतलब याद रहा तो ये भी शायद नहीं है किसी ने उसको बताया जी ने किसी ने बताया और उसने भगवान से कह पढ़ा तो ये अलग बात है। तो भगवान को बताते हैं प्रतिपन बुद्धि संयोग करते और उनके तो भगवान को प्राप्त करने के दिशा में हर कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने की दिशा में हर कोई व्यक्ति प्रयास करता है और उसमें अगर कोई तो रुकावट आती है तो वो संस्कार उसको प्राप्त हो जाते हैं इसे तरह के। और वो भी जो है संस्कार प्राप्त होते हैं वो सब घटनाएं याद नहीं आती थी उसको जो संस्कार प्राप्त हुए उसने जो है कुछ किया था तो वो प्रेरणा के रूप में आता है कि उसको ऐसी इच्छा होती है कि मैं ये करूं। उसके अंदर जो है जितनी प्रगति उसने विकसित कर ली थी और जितनी भक्ति या जो भी ज्ञान तो उसको जो है मतलब बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है फिर भी कुछ निमित्त चाहिए कि वो इसको बता दे। तो वो जो है जब वो सुनता है तो जल्दी उसको ग्रहण कर लेता है तो सब भूला हुआ है उसको लेकिन उसको भी पूरा विवरण पता नहीं है कि जिससे शरीर में वो क्या था क्या नहीं था तो ऐसा भी नहीं है। भगवान भी बताते हैं इसको पूरा विवरण मतलब पता हो कि मेरा नाम क्या था और मैं कहाँ जन्म था और मेरे पिता का नाम क्या था गाँव का नाम क्या था कुछ भी नहीं कुछ बता दूंगा लेकिन बुद्धि संयोगम तत्कम बुद्धि संयोगम प्रबंधित और बुद्धि के जो संस्कार है वो पिछले जन्म का वो पिछले शरीर का उसको प्राप्त हो जाता है। और कोई प्रश्न भरत महाराज को कैसे याद रहा। भरत महाराज बहुत मतलब ऊंची हो चुके थे यानी भक्ति में भाव के धरातल पर आ गए थे अपने भाव के धरातल पर आ गए थे और उन्होंने उसको निश्चित मान लिया था कि ये मेरा निश्चित कर्तव्य है कि मैं हरिद्वार की सेवा करूँ। तो वो जो है भगवान के हृदय में जो है बैठे हुए उनको वो गलती समझा रहे हैं कि तुम्हारी गलती है तो उसको इस तरह याद रहा तो बहुत उसे धरातल पर थे वो तब उन्होंने जो है मतलब हर पैसे के प्राप्त किया। सारी बातें ना थी हाँ सारी बातें थी कि वो राजा थे राजा के रूप में जवानी में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया सब कुछ और पढ़ना लिखना भी सब याद सब कुछ याद ठीक है। अच्छा अभी प्रश्न के लिए समय नहीं है लेकिन मैं एक किताब लेके आया हूँ कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये किताब जो है ऐसे पांच खंडों में किताब छपी है, ये पांच खंड श्रीमद् भागवत के मेरे कमरे में कैसे आए ये बड़ा रहस्य है। जब मैं कमरे में जाना लगा के गया था डॉक्टर के पास, तो कमरे के अंदर पांच खंड मिले श्रीमद् भागवत के, और इसमें रखे अभी तक पता नहीं चला कैसा हो चुके हैं। इसमें प्रत्येक श्लोक की हिंदी में कविता बनी है। अब ये सुनिए कि दो श्लोकों की कविता कैसे बनी है। 28वां तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, 29वां पढ़ा है। 28वें का बाद मैंने पढ़ के सुनाया था। तो कविता इस प्रकार की है, सुनिए ध्यान से। बाज की भांति वेग से वह ऊपर नीचे था जा रहा, उछल कूद के इस भांति था पैंतरे वो दिखा रहा। तीव्र गति उसकी इतनी थी अवसर दूजे को नहीं मिले, उसकी चाल यह देख कर श्री हरि ने कुछ अट्टहास किए। ऊंचे स्वर में प्रचंड और भयंकर अति अट्टहास वो था, उसकी ध्वनि को सुन करके नयन यज्ञ का बंद हुआ। बहुदेश से फिर झपट कर प्रभु ने जा उसको पकड़ा, जो सांप ने झपट कर चूहे को वो दबोच लिया। जिस हरण का सिर्फ की तुक नहीं वज्र से भी कभी फटती थी, अब श्री हरि के वंजन था वह क्षण बता रहा। सभा के द्वार पर खींच के प्रभु ने फिर उसे लात फेंका, अपने जंघा पर असुर को फिर खेल खेल में दिया गया। एक ही नखों से फिर उसको ऐसे फाड़ दिया प्रभु ने, ज्यो करो महाविस्तर सर्व को ही हो चीर रहे। तो ये हिंदी में कविता लिखी है, कोई विष्णु प्रिया देवी में, अभी मैं नहीं जानता कि ये कौन है और जो है कहाँ रहती है मेरी पिता, मेरे पास कैसे है किताब के पांच खंडों में ये पूरे भारत के जो है बारह स्तंभ में इस प्रकार से। तो अगर आप लोगों को पता चले तो आप मुझे सूचना देंगे कौन है, कोई देवी है विष्णु प्रिया देवी। धन्यवाद। श्रीमद्भागवत की जय, श्री राधिका रमण भगवान की जय, श्री श्री भगवान की जय, कृष्ण भगवान।